अगली सुबह हवेली में आज कुछ अलग ही रौनक थी। जहां रोज सुबह एक शांत सधी हुई दिनचर्या होती थी, आज वहां हलचल थी, हंसी थी और हर तरफ एक उत्साह सा फैला हुआ था। नौकर इधर उधर भाग रहे थे, कहीं नाश्ते की तैयारी हो रही थी, कहीं बैग पैक किए जा रहे थे, कहीं गाड़ी तैयार की जा रही थी। हॉल में अदिति और रम्या पहले से ही मौजूद थीं। अरे जल्दी करो ना, अदिति उत्साह में लगभग उछल रही थी। वाह, हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। रम्या हंस पड़ी, और क्या, इतने दिनों बाद तो घर में जान आई है। आर्यन और विशाल भी अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। रत्ना देवी और सुषमा देवी सोफे पर बैठकर सबको देख रही थीं। उनके चेहरे पर संतोष था। शकुंतला चुपचाप सब पर नज़र रखे हुए थीं, जैसे हर छोटी बड़ी चीज़ पर ध्यान दे रही हों। लेकिन इस सब हलचल से थोड़ा दूर ऊपर के कमरे में अक्षरा अपने आईने के सामने खड़ी थी। कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। टेबल पर मेकअप का सामान सजा हुआ था। अलमारी खुली थी जिसमें कई खूबसूरत कपड़े टंगे थे। अक्षरा ने आज खास तैयारी की थी। उसने हल्के रंग की यह खूबसूरत ड्रेस पहनी थी जो उसकी पर्सनैलिटी को और निखार रही थी। उसके बाल खुले थे हल्की सी वेव्स में और चेहरे पर एक सॉफ्ट लेकिन आकर्षक मेकअप। वो धीरे धीरे खुद को आईने में देख रही थी। उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, उम्मीद की चमक। उसने हल्का सा मुस्कुराया और अपने झुमके ठीक किए। आज, उसने खुद से धीरे से कहा, आज सब कुछ बदल जाएगा। उसकी आवाज़ में एक मीठा विश्वास था। वो थोड़ा और करीब आईने के पास आई, अपने चेहरे को गौर से देखा, जैसे खुद को परख रही हो। फिर हल्की शरारती मुस्कान उसके होंठों पर आई। विशु, उसने बहुत धीमे से उसका नाम लिया, आज हम साथ होंगे। उसकी आंखों में सपने साफ दिख रहे थे। और आज, उसने गहरी सांस ली, मैं तुम्हें प्रपोज करूंगी। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे उसकी बातों ने हवा को भी रोक दिया हो। उसने अपनी ड्रेस को हल्का सा ठीक किया, बालों को पीछे किया और फिर खुद को एक बार फिर आईने में देखा। मेरी खूबसूरती, उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मजबूर कर देगी हाँ कहने के लिए। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और कहीं ना कहीं एक मासूम जिद भी। वो कुछ पल खुद को देखती रही, जैसे उस पल को महसूस करना चाहती हो। फिर उसने लिपस्टिक हल्की सी टचअप की और गहरी सांस ली। लेकिन उसी पल उसकी मुस्कान के पीछे एक हल्की सी बेचैनी भी छिपी थी, जैसे दिल के किसी कोने में ये डर भी था, अगर उसने मना कर दिया तो। उसने तुरंत सिर झटका। नहीं, उसने खुद से कहा, वो मना नहीं करेगा। उसकी आंखों में फिर वही जिद लौट आई, उसे करना ही होगा। नीचे से अदिति की आवाज आई, अक्षरा जल्दी आओ ना। अक्षरा ने एक आखिरी बार खुद को आईने में देखा, मुस्कुराई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आज का दिन उसके लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, आज वो अपने दिल की बात कहने वाली थी और उसे पूरा यकीन था कि आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। हवेली का हॉल अब पूरी तरह तैयारियों से भर चुका था। सब अपने अपने बैग लेकर खड़े थे, किसी के हाथ में पानी की बोतल, किसी के पास स्नैक्स, किसी के चेहरे पर बेसब्री। अदिति बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, बस अब पापा आ जाएं। रम्या हंसते हुए बोली, आपको तो जैसे आज सबसे ज्यादा जल्दी है। ऑफकोर्स, अदिति ने मुस्कुराकर कहा, आज फैमिली टाइम है। नीचे सब तैयार थे और ऊपर सीढ़ियों से कदमों की आवाज आई, टप टप टप। सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठी और अगले ही पल विश्वनाथ सीढ़ियों से उतरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसे देखकर सब एक पल के लिए चौंक गए। वो ट्रिप के कपड़ों में नहीं था, बल्कि कोट पहने हुए था, पूरी तरह से तैयार, जैसे कहीं ऑफिस जाने वाला हो। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। अदिति का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। पापा, रम्या ने भी भौहें से कोड़ ली, ये क्या? अक्षरा की मुस्कान जो अभी तक उसके चेहरे पर थी वो वहीं थम गई। उसकी आंखों में हल्की सी उलझन उभरी। विश्वनाथ नीचे आया और सबके सामने रुक गया। उसने एक नज़र सब पर डाली, फिर बहुत सामान्य लहजे में कहा, तुम लोग निकलो, मैं नहीं आ पाऊंगा। जैसे ही उसके शब्द हवा में गूंजे, माहौल एकदम बदल गया। क्या? अदिति लगभग चिल्ला पड़ी। पापा, आप नहीं चलेंगे? विश्वनाथ ने शांत आवाज में कहा, ऑफिस में कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाया, पापा आज तो छुट्टी ले लेते। विशाल ने भी कहा, हाँ इतना प्लान बनाया था। लेकिन विश्वनाथ ने बस सिर हिला दिया, काम ज्यादा जरूरी है। उसकी आवाज में कोई बहस की जगह नहीं थी। अक्षरा अब तक चुप खड़ी थी, उसकी आंखें बस उसी पर टिकी थीं। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। विशु, उसकी आवाज नरम थी लेकिन उसमें हल्की बेचैनी थी। विश्वनाथ ने उसकी तरफ देखा। अक्षरा ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, प्लीज चलो ना, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उसने बहुत धीरे से कहा। मैं भी। ये दो शब्द उसके होठों से बहुत मुश्किल से निकले, लेकिन उनका असर गहरा था। कुछ पल के लिए विश्वनाथ की नजरें उसकी आंखों में अटक गई, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसने नजरें हटा ली। नहीं अक्षरा, उसकी आवाज ठंडी थी, साफ थी। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकता। उसके शब्द सीधे थे और उनमें कोई नरमी नहीं थी। अक्षरा का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन विश्वनाथ ने बीच में ही रोक दिया। डोंट इंसिस्ट, उसकी आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। मुझे देर हो रही है। इतना कहकर उसने अपना फोन उठाया और बिना किसी की तरफ देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रम्या की आंखें भर आईं। मामा, लेकिन इस बार वो नहीं रुका। दरवाजा खुला और फिर धड़ाम, वो बाहर जा चुका था। हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे अभी अभी किसी ने पूरे माहौल की रौनक छीन ली हो। अदिति धीरे से सोफे पर बैठ गई। मूड ही खराब कर दिया, वो बड़बड़ाई। सुषमा देवी ने उसे संभालने की कोशिश की। अरे काम होगा सच में, लेकिन उसकी आवाज में भी अब उतनी ऊर्जा नहीं थी। आर्यन और विशाल चुप थे। सुषमा देवी ने गहरी सांस ली। काम का आदमी है, क्या करें। रत्ना देवी ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन इन सब के बीच अक्षरा बिल्कुल चुप खड़ी थी। उसकी नजरें अब भी दरवाजे पर टिकी थी, जहां से अभी अभी विश्वनाथ गया था। उसके हाथ धीरे धीरे ढीले पड़ गए। उसकी आंखों की चमक अब फीकी पड़ चुकी थी। वो सपना जो उसने कुछ देर पहले आईने के सामने देखा था, जैसे किसी ने एक झटके में तोड़ दिया हो। उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, आज सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। वो चुपचाप मुड़ी और खिड़की की तरफ जाकर खड़ी हो गई। बाहर गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और कुछ ही पलों में वो आवाज भी दूर चली गई। अक्षरा ने आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक खालीपन उतर आया था। पीछे से अदिति की आवाज आई, अब क्या करें। कुछ पल के सन्नाटे के बाद रम्या ने धीरे से कहा, चलो हम लोग चलते हैं, शायद मूड थोड़ा ठीक हो जाए। लेकिन अक्षरा वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए थी। अंदर वो टूट चुकी थी।